Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
एक जड़ संतति है, एक चैतन्य संतति है ना। तो जड़ संतति को चैतन्य संतति नहीं माना जा सकता और चैतन्य संतति को जड़ संतति नहीं मानी जाती। चिदाभास चैतन्य संतति है और अंतकरण जड़ संतति है। तो जिसकी जो संतति है वही मानो, दूसरी संतति को क्यों मानते हैं? कुछ भी कह रहा, तो कुछ भी संबंध, तो अच्छे संबंध है, कोई भी संबंध मान लो ना। और क्या है, सर्प का रस्सी के साथ क्या संबंध है? कार्य कारण भाव संबंध है, क्या संबंध है? भोक्ता भोग्य भाव संबंध है, सब आध्यात्मिक संबंध है, कोई संबंध नहीं आध्यात्मिक संबंध। सर्प रस्सी में किस संबंध से रहता है? संयोग संबंध से है? संयोग संबंध से रहेगा, समवाय संबंध से रहेगा। लेव जी, अब समवाय संबंध से रहेगा मानोगे तो कभी भी उसका वियोग नहीं होगा। समवाय संबंध मानो नित्य संबंध, संयोग संबंध दो वस्तुओं में होता है। तो तुमको सर्प और रस्सी को दोनों को पृथक पृथक सिद्ध करना पड़ेगा, तभी पृथक पृथक सिद्ध दो वस्तुओं का संयोग संबंध होगा। रस्सी तो सिद्ध होगा पृथक, लेकिन सर्प सिद्ध कर पाओगे पृथक? तो रस्सी और सर्प का संयोग संबंध भी नहीं बनता है। अवयव अवयवी संबंध मानोगे? अध्यास अनादि है, अविद्या अनादि है, इसलिए उसके कार्य अनादि, अध्यास अनादि है। किस दिन अध्यास हुआ? चलो अध्यास का बर्थडे बताओ। अध्यास का वर्ड किस दिन अध्यास हुआ? सर्प का रस्सी में किस दिन अध्यास हुआ? किस टाइम अध्यास हुआ? तो तुम कहोगे जिस टाइम देखा उसी टाइम अध्यास हुआ। तो क्या उस समय जो देखा है ये अध्यास हुआ है, ये बोध तुमको हो रहा है उस टाइम? नहीं, वो बोध हो जाए तो फिर खत्म हो गया। ये अध्यास हो रहा है, ये बोध हो गया तो खत्म हो गया, काम खेले खत्म। ले जी,
जिस दिन अंतकरण निर्माण होता है उसी दिन अध्यास शुरू होता है।
किस दिन होता है? खत्म हो गई बात, अनादि मानना पड़ेगा कि नहीं? है, किस दिन किस बजे कितनी बजकर कितने मिनट पर है ना? स्टार्ट पॉइंट तुमको डिक्लेयर करना पड़ेगा शादी मानने के लिए। शादी मानने के लिए स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट टाइम, वो तुमको मानना पड़ेगा, वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। चलिए, तैरेव विगत शुद्ध परमात्मा निगद्यते अनादि संबंध वत्या क्षत्रज्ञोयम् अविद्यया युक्तः पश्यति भेदेनः। वही भेद के रूप में देखता है। किस किस को भेद के रूप में देखता है? ब्रह्म तात्मनि संस्थितम्। इस तरह वो देखता है, अपने में ही संस्थित, आत्मनि संस्थितम ब्रह्म, अपने स्वरूप के रूप में बैठा हुआ जो ब्रह्म है उसी को भेदे न पश्यति। अपने ही स्वरूप में स्थित जो ब्रह्म है उसको भेदे न पश्यति, अपने से भिन्न के रूप में देखता है, जैसे स्वप्न में अपने में ही स्थित जगत प्रपंच को, स्वाप्निक प्रपंच को अपने से भिन्न देखता है, अपने इसमें ही अवस्थित, अपने से अभिन्न रूप में अवस्थित उन स्वप्न प्रपंच को स्वप्न में भेदे न पश्यति। इसी तरह अपने स्वरूप से अभिन्न उस ब्रह्म को भेदे न पश्यति। ब्रह्मा अलग है, मैं अलग हूं, इस निश्चय से बैठ जाता है। तथा विष्णु पुराण है, अभी विष्णु धर्म कोई अलग है, विष्णु पुराण अलग है कोई। इसीलिए श्रद्धा नहीं करते हैं अद्वैतवादी, शंकरानुयायी। श्वेता सूत्र के भाष्य पर इतनी श्रद्धा नहीं करते, समझे। तथा च विष्णु पुराण है, फिर भी श्रद्धा इसलिए करते हैं कि इन पुराणों के प्रपंच में भी अद्वैत प्रतिपादक वाक्य दिख रहा है, और इसीलिए वह आदरणीय है, पूज्य है, श्रद्धेय है। कौन? श्वेता सूत्र या उसके रचनाकार, इसलिए वो आदरणीय है। अद्वैत प्रतिपादक वाक्य आदि प्रमाण आदि जहां से भी लाए ना, जानू में से भी ले आते हैं तो भी वो श्रद्धेय है। बात समझ आए कि नहीं? यदि कोई कहता है कि नरक में अद्वैत होता है तो हम उसकी चरण वंदना करेंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग में यदि द्वैत होता है कहता है तो वो खीर पकाकर दे तो भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हमको द्वैत पसंद नहीं है। ये श्रद्धे है, पुराण से लाए चाहे कुरान से लाए, हमको कोई विरोध नहीं है। पुराण से लाए प्रमाण चाहे कुरान से लाए, हमको कोई आपत्ति नहीं। यदि द्वैत प्रतिपादक वाक्य वेद से भी लाते हैं तो हमको आपत्ति है, बस। इसका मतलब वेद के हृदय को जाने बिना ला रहे हो, वेद के तात्पर्य को जाने बिना, वेद के श्रुतियों के अभिप्राय को जाने बिना ला रहे हैं। तो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में भी ये प्रमाण है। अब कहां श्रुति को प्रमाणित करने के लिए श्रुत्यंतर की जगह पुराणांतर में जा रहे हैं, गीता में जो कही गई है, उपनिषद में जो कही गई है वो हमारे गुरुजी कह रहे हैं, ये तो ठीक है। हमारे गुरुजी जो कह गए हैं वो उपनिषद में कहा गया है, अरे तुम्हारे गुरु कल के हैं और उपनिषद अनादि है, अब तुम्हारे गुरु पैदा होने से पहले उपनिषद कह गए, अब तुम्हारे गुरु कहे तभी उपनिषद ने कहा, फिर भी ठीक है। जिसने भी कहा अद्वैत की बात तो एक नालायक से नालायक भी कहता है ना तो भी ठीक है, बच्चा कहता है तो ठीक है, नौकर कहता है तो भी ठीक है, मालिक यदि द्वैत की बात करता हो और नौकर अद्वैत की बात करता हो तो हम तो उस नौकर को ही मानेंगे भाई, हम तो उसी का आदर करेंगे। एक ने कहा था ना, कोई वैष्णव थे कहते हैं भगवान राम लक्ष्मण और हनुमान वनवासी राम का मूर्ति पूजा करते होंगे क्योंकि वैरागी थे, सीता को हटा दिया होगा है ना, सीता को रावण ले गया था, उस समय के जो वनवासी राम थे तपस्वी राम थे उन राम का वह पूजा करता था। तो तीन मूर्ति चांदी की बना ली, अब उसने अपने भावना से बनवा ली राम और लक्ष्मण और हनुमान। राम और लक्ष्मण दोनों को कंधे में लेकर चलने वाले हनुमान तो जरा तगड़े होना चाहिए, दुबले पतले और छोटे से तो काम चलेगा नहीं। तो राम लक्ष्मण की मूर्ति थोड़ा राम की थोड़ी से ज्यादा चांदी लगाकर बनाया, थोड़ा बड़ी मूर्ति बना ली, और लक्ष्मण की राम की मूर्ति से बड़ी मूर्ति तो बनाया जाएगा नहीं, लक्ष्मण की मूर्ति राम से मूर्ति से बड़ा होगा, उसको छोटी ही बनाना पड़ेगा, छोटा ही बनाना पड़ेगा। अब हनुमान जी को तगड़ा बनाना है तो थोड़ा चांदी ज्यादा लगानी है, तो चांदी ज्यादा लगा लिया तो थोड़े भार हो। एक बार उसको कुछ समस्या आ गई तो बेचना था, ले गया तो सोनार ने राम की मूर्ति कांटे में चढ़ाई तो बोले 250 ग्राम रहा होगा चांदी, तो इसका 10,000 रुपया मूल्य, पता नहीं मुझे पता नहीं हो, अंदाजन कह रहे हूं 10 ग्राम का कितना होता है 250 ग्राम का कितना होता है ये मुझे पता नहीं है, समझने के लिए सपोज है ना, 250 ग्राम का 10,000 रुपया बोल दिया। और लक्ष्मण में 200 ग्राम था, हाँ कितना हुआ 8,000 के समथिंग। अब हनुमान की मूर्ति चढ़ाई तो जरा उसमें तो पूरे 500 ग्राम था, मूर्ति तगड़ी थी, कितना लगाया 20,000। तो उसने ईमानदारी से उस ज्वेलरी ने उस वैष्णव महात्मा को कहा तुम्हारे राम की मूर्ति 10,000 की कीमत है, इसका 10,000 मिलेगा तुमको, लक्ष्मण 8,000 मिलेगा, हनुमान का 20,000 मिलेगा। तो वैष्णव बिगड़ गए, कैसा मूर्ख है, मालिक का मूल्य कम और नौकर का मूल्य ज्यादा है, राम का 20,000 होना चाहिए था, हनुमान तो सेवक है दोनों के, तो उनका तो 5,000 होना चाहिए था, तो मूर्ख है। तो उसने कहा भाई ये नौकर का कीमत कम होना चाहिए, मालिक का कीमत ज्यादा होना चाहिए, ये हमारे में ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला हमारे यहां नहीं है, हमारे यहां क्या है ज्यादा चांदी का ज्यादा मूल्य, कम चांदी का कम मूल्य, हम चांदी के मूल्य कर रहे हैं, न मालिक का मूल्य कर रहे हैं न नौकर के मूल्य करते हैं, तो हम इसीलिए मालिक और नौकर का मूल्य नहीं करेंगे। अद्वैत प्रतिपादन यदि नौकर करता है तो हम उसी का आदर करेंगे, क्योंकि हम नौकर का आदर नहीं कर रहे हैं, अद्वैत सिद्धांत का आदर करते हैं बस। विभेद जनक अज्ञाने नासमात्यंतिकं गते, विभेद जनक अज्ञाने, भेद को उत्पन्न करने वाली अविद्या है ना, भेद को उत्पन्न करने वाली अविद्या है, भेद की मां का नाम क्या है भेद की मां का नाम क्या है अज्ञान अविद्या, तो भेद की मां का नाम क्या है, अब तुम्हें आउट उत्तर देना मुश्किल पड़ रहा है, भेद के मां का नाम अविद्या है तो वेद के मां का नाम क्या है, वेद के मां का नाम भी अविद्या है, हाँ ये आज नई बात सुनने में मिला नहीं। आज तक किसी ने कहा होगा वेद की मां का नाम क्या है? अविद्या। आज तक किसी ने कहा है? आज नई बात सुने। तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, जहां अविद्या निवृत्त हो गया तो हम वेद वेद नहीं रहेगा। अविद्या चली गई तो भेद भेद नहीं रहेगा, वेद वेद नहीं रहेगा। तत्त्वस्त आत्मैवाव तत् केन कम विजानीयात्। तो वेद क्या होता है? अद्वैत वेदांतमा ब्राह्मी स्थिति में वेद क्या होता है? कुछ भी नहीं। वेद तो अविद्या द्वारा परिकल्पित है, अविद्या का ही कार्य है वेद। किसी से पूछ लेना भाई, पता चलेगा कि उसके कितनी पानी में है। भेद की मां का नाम क्या है पूछ लेना किसी से। मुझे लगता है इंटरमीडिएट के प्रश्न में भेद की मां का नाम क्या है तो सब फेल हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? किसी को नंबर मिलेगा? पढ़ाया नहीं गया है उनको, लेकिन तुम पास हो जाओगे। आप लोग पास हो जाओगे। इसी तरह वेद के मां का नाम क्या है? अविद्या। विभेद जनक एक अज्ञाने नासम आत्यंतिकम गते, अत्यंतिक नाश, उस अविद्या का अत्यंतिक नाश, यानी फिर दोबारे उस अविद्या का कोई संभावना नहीं, स्वरूप नाश। आत्मनो ब्रह्मणो भेद भेदम, आत्मा का और ब्रह्म का भेद भी असंतम ककरिष्यति, उस भेद को रोक कौन पाएगा? आत्मा परमात्मा के भेद के असंतता को कौन रोक पाएगा? बोलो, भेद के समाप्ति को कौन रोक पाएगा? तुम्हारे पकड़ने से रोकेगा है? भेद का जनक जननी अविद्या के नाश हो जाने पर आत्मा और परमात्मा के भेद के अभाव को होने से तुम रोक पाओगे? कोई रोक नहीं पाएगा। तथा चवाशिष्टे, यही तो श्वेता सूत्र उपनिषद, श्वेता सूत्र उपनिषद की है विशेषता, खींचे जा रहे हैं। तथा चवाशिष्टे योग शास्त्रे, योग वाशिष्ठ, वाशिष्टे योग शास्त्र, यानी योग वाशिष्टे प्रश्नपूर्वकम दर्शितम, भगवान राम और वशिष्ठ जी के प्रश्नोत्तर पूर्वक इस तत्व को इस तरह समझाया गया है। भगवान राम प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव वशिष्ठ जी, यदि आत्मा निर्गुण शुद्ध सदानंदो अजरो अमरः, आत्मा यदि निर्गुण है, शुद्ध है, नित्य आनंद रूप है, कभी बुरा नहीं होता और कभी मरता नहीं, तब संस्कृति कस्य, फिर संसार किसको प्राप्त होता है? यदि आत्मा अजर है, अमर है, सदा आनंद रूप है, है? शुद्ध है, निर्गुण है, तब फिर ये संसार किसको प्राप्त होता है? शुद्ध आत्मा को संसार प्राप्त हो रहा है, फिर किसको प्राप्त हो रहा है? संस्कृति कस्य तातस्यात्, हे तात गुरु, गुरु को तात कह रहे हैं, शिष्य को भी तात कहते हैं। मोक्ष वा विद्या विभो, और ब्रह्म विद्या के द्वारा मोक्ष होता है तो किसको मोक्ष होगा, संस्कृति किसको प्राप्त होगा, और ब्रह्म विद्या के द्वारा मुक्त होने वाला आत्मा फिर कौन आत्मा मुक्त होगा, जबकि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निर्गुण है, सदानंद रूप है। चित्रनाश कथम तस्य, यदि आप कहते हो कि क्षत्रज्ञ को बंधन की प्राप्ति और क्षत्रज्ञ को ही मोक्ष की प्राप्ति, बंध मोक्ष ब्रह्म को होगा कि जीव को होगा, तो ये प्रश्न। तो क्षत्रनाश कथम तस्य, ज्ञायते भगवान यतः यथावत सर्वम एतन में वस्तुर वक्तुम अर्हसि सांप्रतम। इस समय, सांप्रतम माने इस समय, ये सारी मेरी मन की जिज्ञासा है कि क्षत्रज्ञ का क्षत्र का नाश कैसे होगा, शुद्ध ब्रह्म को संसार की प्राप्ति कैसे हुई, और जीव कैसे मुक्त होता है, ब्रह्म को बंधन की प्राप्ति कैसे हुई और जीव कैसे मुक्त होगा। सांप्रतम इस समय इन मेरे प्रश्नों का आप है संतोषजनक युक्तियुक्त श्रुतियुक्त अनुभूतियुक्त प्रमाण आपको देना पड़ेगा, देकर मुझे समझाना पड़ेगा। वासिष्ठ कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।